चर्चा करते हैं। अहिंसा, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। अब जो है वो श्रावक के तीन गुणगत और चार शिक्षा व्रतों की और चर्चा है। तो इसमें उसी को बता रहे हैं कि दस दिस गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाखे। जब श्रावक पांच अनुव्रतों को ले लेता है तो उसके बाद उन अनुव्रतों को की रक्षा के लिए या उन अनुव्रतों के बढ़ाने के लिए जो व्रत लिए जाते हैं वे गुणव्रत के हैं। तो उन गुणव्रतों में पहला है दिग्व्रत। दिग्व्रत का मतलब है दसों दिशाओं की एक सीमा कर लेना। उस सीमा के बाहर मैं अपना कोई व्यापार इत्यादि नहीं करूंगा जिसके माध्यम से कि पाप होता है, इसलिए मैं उस सीमा के बाहर के पाप से तो बच गया। अब सीमा के भीतर जो है पाप मेरे द्वारा होगा तो वो अहिंसाणु व्रत की वजह से वो भी लिमिटेड हो गया है, और उसके बाहर तो बिल्कुल ही पूरी तरह से त्याग हो गया। तो ये कह रहे हैं कि दसों दिशाओं की सीमा या प्रमाण उसका निश्चित कर लेना, मर्यादा निश्चित कर लेना, उसके बाहर फिर नहीं जाना, कोई भी पापकारी उसके बाहर नहीं करना, यही दिग्व्रत है। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा गमनागमन प्रमाण ठान अन सकल निवास। फिर अब वो जो हमने बहुत बड़ी सीमा रख रखी है दसों दिशाओं की, उसमें भी हम लिमिटेशन करते हैं, वो टाइम पीरियड के लिए करते हैं, एक निश्चित समय के लिए। उसमें भी फिर अपने गांव से बाहर नहीं जाऊंगा, या अपनी गली, अपने मोहल्ले, या कि इस बगीचे से बाहर नहीं जाऊंगा, या इस बाजार से बाहर नहीं जाऊंगा, इस तरह जो आवागमन की सीमा है उसको भी निर्धारित कर लेना। इसका नाम देशव्रत कहलाता है, इसी को देशावकाशिक व्रत भी कहते हैं। ये दूसरा व्रत है। और तीसरा व्रत जो है अनर्थ दंड व्रत है। काहू की धनहानि किसी जय हार न चिंते, दे न सो उपदेश होए अगबनज प्रसिद्ध। अनर्थ दंड का मतलब ऐसा है कि पर्पज लेस सिन। अभी श्रावक को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाप तो करना पड़ता है, उसका उसे निषेध नहीं है, उसने उसकी भी लिमिटेशन कर ली है, लेकिन जो उसके लिए आवश्यक नहीं है ऐसा पाप क्यों करे। मुझे अपने श्रावक के लिए, अपने भोजन के लिए जो अग्नि इत्यादि जलाना है और जो हिंसा करनी वो तो ठीक है, लेकिन अब भोजन तो चार लोगों के लायक चाहिए था और आप 40 के लायक बनाएंगे तो ये तो वेस्ट है। आपको पानी अपने नहाने धोने के लिए एक लोटा चाहिए था और आपने चार लोटे गिरा दिया, ये भी वेस्ट है। आप अपना जीवन तो ठीक से जी रहे हैं और बैठे बैठे दूसरे के बारे में हिसाब किताब बना रहे हैं, उसको उसके बारे में गलत सलत सोच रहे हैं, तो कहते ये तो व्यर्थ है, आप व्यर्थ का पाप कर रहे हैं। तो व्यर्थ पाप, या कि व्यर्थ पाप न कह के अनर्थकारी पाप, अपने लिए भी उसका कोई उपयोग नहीं है इसलिए व्यर्थ है, लेकिन दूसरे के लिए अहितकारी है इसलिए वो अनर्थ है। ये दोनों चीजें इसमें शामिल हैं। तो इसमें पांच प्रकार का होता है ये अनर्थ दंड। दंड मतलब होता मन वचन काय की पाप क्रिया। मन वचन काय की ऐसी पाप क्रिया जो दूसरे को घातक है वो कहलाती अनर्थ दंड। और अनर्थ दंड विरत मतलब मन वचन काय की अनर्थकारी क्रिया से विरक्त हो जाने का नाम अनर्थ दंड व्रत है। ये इसकी सामान्य सी परिभाषा है। इसमें इन्होंने और अलग अलग पांचों के क्रम से पांच प्रकार के अनर्थ दंड को डिफाइन किया है। काहू की धन हानि किसी है जय हार न चिंते। हम बैठे बैठे दूसरे के अहित के बारे में न सोचें, उसके जय और पराजय का विचार भी न करें, ये इसको जो है अपध्यान कहते हैं। अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है, इससे भी विरक्त होना चाहिए। फिर दे न सो उपदेश होए अगवनज ग्रसित है। अब हम स्वयं तो ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं हिंसा का, लेकिन हम दूसरे को इस तरह का उपदेश दे रहे हैं, पाप का उपदेश दे रहे हैं, या कि उसको ऐसी विधि बता रहे हैं जिससे कि वो और अधिक हिंसा में लग जाए, और उसके साथ हम ये भी कह रहे हैं कि देखो मैंने तो इस तरह का त्याग कर दिया है लेकिन तुम तो कर सकते हो, तो ऐसा हम उसको उपदेश दे करके और प्रेरित करके और उससे हिंसा इत्यादि का काम करवा रहे हैं, चाहे वो कृषि हो चाहे और दूसरे भी कार्य हो।
यहाँ वो मेरे दिल में कई बार आया है, क्योंकि आपने कई बार कहा प्रवचनों में भी कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें पुण्य पाप के आप खुद ही, आपकी फैमिली मेंबर कोई भी, तो जैसे महिलाएं खाना बनाती हैं उसमें बहुत हिंसा होती है, तो उससे जो थोड़ा बहुत भी पाप उनको लगेगा, थोड़ा तो लगेगा क्योंकि वो तो हिंसा तो हो रही है, तो गलती तो पूरी फैमिली के लिए है, उनका उद्देश्य तो पूरी फैमिली के लिए है, तो क्या फैमिली मेंबर्स को भी उसका कुछ हिस्सा?
फैमिली मेंबर्स उसका जितना समर्थन करेंगे उतना उनको लगेगा, वो भी समर्थन तो करते हैं क्योंकि उसे ग्रहण करते हैं। मैं अपने लिए मन वचन काय की शुद्धि बुलवा लेता हूँ फिर लेता हूँ, मैं इसलिए उस पाप से बच गया हूँ, लेकिन आपके साथ तो ऐसा नहीं है। उस बनाने वाले पूरे आप अगर इस तरह करेंगे तो आपके पास व्रत भी होना चाहिए। देखिए, जिस व्यक्ति ने पाप नहीं करने का संकल्प कर लिया है और फिर कोई व्यक्ति अगर पाप करता है तो उस पाप को भी वो स्वीकृति नहीं दे रहा है, इसलिए बच पा रहा है। और जिसने अभी पाप का तो त्याग नहीं किया और दूसरे के लिए रोक रहा है, तो रोक रहा है उतना ही उसको लाभ होगा, स्वयं तो उसने भी किया नहीं त्याग। इसलिए अगर आप ये चाहेंगे कि हमने तो अभी त्याग किया नहीं और आप कर रहे हैं तो हम आपका समर्थन भी नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा सा तो फिर भी ठीक है, लेकिन 100% आप इसमें सक्सेस नहीं होंगे। आप इतना ही समर्थन करें कि देखो भाई, चार लोगों के लायक भोजन बनाना उतनी बनाया करें, 10 लोगों का मत बनाया करें, इसका मैं समर्थन नहीं करता कि तुम इतना विस्तार लो और 10 लोगों के लायक, चार की है तो चार का तो मैं समर्थन करता हूँ कि अपन सबको जीवना है तो उतना बनाओ, तो उसका समर्थन कर रहे हैं तो उतना हमें भी उसका पाप लगेगा।
जो
देखिए वहां से कमा करके व्यक्ति ला रहा है तो घर के लोग जो है उसका समर्थन कर रहे हैं तो उन्हें भी उतना जितना समर्थन किया है उस संपत्ति का उसका पाप लगेगा। इसी तरह घर कार्यों का भी हमारे भावों पर निर्भर करेगा। तो ऐसा कोई उपदेश जिसके द्वारा हिंसा होती है, पाप होता है, चाहे वो व्यापार हो या खेती वगैरह हो, उसका उपदेश नहीं देगा, ये उसके पापोपदेश अनर्थ दंड से विरक्ति कहलाएगी। और फिर कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, और प्रमादवश मतलब उसको क्या कहते हैं, असावधानी पूर्वक, असावधानी या कि बिना प्रयोजन के जल का एक जल भूमि वृक्ष वनस्पति का एक पावक मतलब अग्नि का एक इन और वायु का एक इन सब जीवों के लिए वो व्यर्थ जो है नुकसान नहीं पहुंचाता है, असावधानी पूर्वक भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाया गया, तो ये जो है प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड व्रत कहलाता। राग द्वेष करतार कथा कबहु न सुनीजे, और जिससे राग द्वेष बढ़ता है ऐसी कथा दूसरे के पास बैठ करके दूसरे की निंदा प्रशंसा वाली कथा नहीं सुनना, यही जो है दुश्रुति कहलाती। मैं तो इसको ये मानता हूँ कि गांधी के तीन मंदिर वाला मामला है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, वही इसमें
आया।
अच्छा, असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यस लाध, और ऐसी चीजें, असि मतलब तलवार और धनु मतलब धनुष, हल मतलब हल होता ही है, ये सब हिंसा के उपकरण हैं। इन उपकरणों को या पदार्थों को दे करके अपने लिए शाबाशी नहीं लेगा, यश नहीं लेगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसके माध्यम से हिंसा करेगा, ये हिंसा दान कहलाता है। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि हिंसात्मक होती हैं, जिनके देने से व्यक्ति हिंसा कर सकता। इसमें ये भी आता है कि जैसे किसी पड़ोसी ने अपन से वो मांगी, दिया सलाई मांगी, तो पड़ोसी पर अगर हमारा विश्वास है तो हम दिया सलाई उसे देंगे, क्योंकि वो अपनी अग्नि जलाने के लिए ले रहा है, लेकिन अगर वो दूसरे के घर में आग जलाने के लिए ले उसका उपयोग कर ले तो फिर हम नहीं देंगे उसके लिए। हम विश्वास कर, प्रति व्यक्ति जिस भी ऊपर विश्वास है उसी को ये उपकरण देगा, अन्यथा नहीं देगा। और राग द्वेष करतार कथा कबहु न सुनीजे, ये दुश्रुति कहलाती है, बैठ करके दूसरे की निंदा इत्यादि हम नहीं करेंगे, इससे व्यर्थ ही पाप होता है। और हम अनर्थ दंड हेतु अग तिन्हे न कीजे, और दूसरे का जिससे अन्न और भी जो पाप के कारण है उन सबको भी वो नहीं करता है। इस तरह से ये 5 अनर्थ दंड के भेद हैं। अनर्थ दंड का मतलब ये है कि बिना प्रयोजन के और पापकारी करना, बिना प्रयोजन के पापकारी से बचना, ये अनर्थ दंड विरति है, ये एक गुण व्रत है। इस तरह से 3 गुण व्रत हो गए, दिव्य व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। इसके बाद श्रावक के लिए 4 शिक्षा व्रत कहे गए हैं, जिससे कि उसे महाव्रत या कि मुनि धर्म की शिक्षा मिलती है। गृहस्थ में रह करके भी वो अपने आत्मकल्याण के लिए और ऊंची स्थिति की शिक्षा ले सकता है। वो कैसे ले सकता है? तो सामायिक के द्वारा। तो सामायिक एक शिक्षा व्रत है, धर और समता भाव सदा सामायिक करिए। एक ही लाइन में इन्होंने कह दिया कि कुछ समय के लिए अर्थात तीनों संध्याओं में और समता भाव रखना, सुख दुख हर्ष में हर्ष विषाद नहीं करना, लाभ हानि में संक्लेश नहीं करना और समता परिणाम रखना उतनी देर के लिए, या कि पांचों पापों का त्याग करके पंच परमेष्ठी का स्मरण करना, ऐसा कह लीजिएगा। ये जो है सामायिक कहलाती है, इसको ये श्रावक के लिए शिक्षा व्रत की तरह है, वो तीन संध्याओं में इसका अभ्यास करे। पर्व चतुष्टय माही पाप तज प्रोसद धरी, और पर्व और चतुष्टय माही चार पर्व होते हैं, दो अष्टमी दो चतुर्दशी, ऐसे एक माह में चार पर्व के दिनों में समस्त पाप क्रियाओं का त्याग कर देवे और प्रोषद अर्थात उपवास करे। एक ही मानी जाती है पहली वाली, जहाँ दो तिथियां हो जाएं, दो चतुर्दशी या दो अष्टमी हो जाएं, वहां पहली वाली को मान लिया जाता है।
महाराज जी, इसमें जो वृद्धों का वो दिया है कि एक दिन पहले एक आसन करना चाहिए,
हाँ, वो भी एक प्रक्रिया है। प्रोषद का मतलब होता है एक बार भुक्ति, और उपवास का मतलब होता है चारों प्रकार के भोजन का। जिस उपवास के आगे पीछे एक एक बार भोजन किया जाए उसे भी प्रोषद उपवास कहते हैं, और प्रोषद का अर्थ पर्व भी होता है, तो पर्व के दिन में किया जाने वाला उपवास प्रोषद उपवास कहलाता। दोनों परिभाषाएं अपने आप पर दी गई, यही दोनों, प्रोषद का अर्थ है एक बार भोजन, तो जिस उपवास के आगे पीछे एक एक बार भोजन किया जाए उसे प्रोषद उपवास कहते हैं, एक परिभाषा तो ये हो गई। इस तरह से हमें सप्तमी को एक आसन, अष्टमी को उपवास, नवमी को एक आसन करना चाहिए, 13-14 सूर्य अमावस्या पूर्णिमा को भी इसी तरह का क्रम रखना चाहिए। दूसरा आचार्य महाराज का कहना है, उमा स्वामी आचार्य का, कि नहीं, प्रोषद का मतलब होता पर्व, और पर्व तो चार ही होते हैं एक महीने में, इसलिए दो अष्टमी दो चतुर्दशी को उपवास करना, ये प्रोषद उपवास, ये भी दिया हुआ, तो अपने को दोनों मानने हैं। यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि चार पर्व के दिनों में प्रोषद धरिए अर्थात उपवास करिएगा। भोग और उपभोग नियम करी ममत निवार, और भोग और उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनकी हम सीमा कर लें, उनका नियम कर लें कि इतने समय के लिए हम ग्रहण करेंगे, इतने समय के लिए हमने त्याग किया। भोग उपभोग की चीजें, भोग की चीज वो कहलाती भोजन इत्यादि जो एक बार हम उपयोग कर लेते हैं वो खत्म हो जाता, वस्त्र इत्यादि उपभोग की चीजें हैं जिनको बार बार हम उपयोग में लेते हैं तो वो उपभोग कहलाती, इनकी लिमिटेशन कर ली, क्योंकि इनके माध्यम से हिंसा होती है और हमने अणुव्रतों को ले रखा है तो हम शिक्षा व्रत लेकर के उनको और अधिक सूक्ष्म बनाते हैं। ये इस तरह से तीसरा शिक्षा व्रत है भोग उपभोग परिमाण नाम का, और चौथा शिक्षा व्रत है अतिथि संविभाग, मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहार, अपने आहार में से समीचीन विभाग करना अतिथि के लिए और उसे अतिथि को दे करके फिर स्वयं ग्रहण करना। तो ये मुनि को भोजन दे से अर्थ है यहाँ पर अतिथि से लेना है। अब वो अतिथि उत्तम मध्यम और जघन, ये तीनों प्रकार का हो सकता है, तो उत्तम तो मुनि महाराज को माना गया है, फिर जो देशव्रती हैं अनुव्रती हैं उनको मध्यम माना गया है, जघन सामान्य साधर्मी जन हैं वो माने गए हैं। तो इन सब के लिए पहले अतिथि को भोजन देंगे, अपने भोजन में से विभाग करता है वो सम विभाग, इसलिए अतिथि सम विभाग नाम का व्रत रखा गया। अतिथि के लिए भी देना है मुझे, उसमें से एक पार्ट उसका भी है।
तो
रोज जो व्रत लेगा वो तो रोज इस तरह का की भावना तो भाएगा, किसका भावना तो भाएगा, अगर वहाँ कोई अतिथि नहीं है, प्रयत्न तो वो करेगा पर अतिथि नहीं है तो उनका सब अच्छे से हुआ हो या हो इस तरह की भावना भागे फिर अपना भोजन शुरू कर देगा, पर अतिथि की स्मरण किए बिना अपना भोजन शुरू नहीं करेगा क्योंकि वो व्रति है अतिथि संविभाग। इस तरह से ये 12 व्रत श्रावक के लिए कहे गए हैं। 12 व्रत के अतिचार पनपन न लगावे, मरण समय संन्यास धार तसु दोष न सावे। इन 12 व्रतों में जो अतिचार का मतलब होता है शिथिलता या दोष, तो पांच पांच हरेक के अतिचार हैं हरेक व्रत के, वो इसमें ना लगाएं और निर्दोष रूप से अपने व्रतों का पालन करें, और अंत समय में मरण के समय पर संन्यासधारी संन्यास कार्य यहाँ पर संलेखना है, समस्त चीजों का त्याग करके और शांति पूर्वक अपने शरीर को छोड़ देना तसु दोष नशावे, क्योंकि संलेखना से ही 12 व्रतों में जो दोष जीवन भर लगे हैं वे प्रमार्जित होते हैं। इनका कहना है कि जैसे एग्जामिनेशन होता है तो आपने कितनी स्टडी करी है ये आपके एग्जाम से क्लियर होगा, तो इसी तरह संलेखना इम्तहान है कि हमने 12 व्रतों को निर्दोष पालन किया है, कदाचित उसमें दोष लग भी गए हैं तो संलेखना के द्वारा उन दोषों का भी निराकरण हम कर लेते हैं, हो जाता है। यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलह उपजावे तय तय जय नरजन्म पाए मुनि भय शिव जागवें। इस तरह से जो श्रावक के 12 व्रतों का पालन करते हैं वे देवायु का बंद करके कहाँ तक जाते हैं, 16वें स्वर्ग तक जाते हैं, और 16वें स्वर्ग में जाकर के वहां से आकर के तय तय जय वहां से च्युत होकर के नरजन्म अर्थात पुनः मनुष्य होकर के और महाव्रतों को अंगीकार करके शिव जावे अर्थात मोक्ष को पा सकते हैं। श्रावक के लिए इतना शॉर्ट जो है ड्यूरेशन अपने संसार को काटने का है।
स्वर्ग जाना ही पड़ेगा महाराज जी, ऐसा नहीं कि मनुष्य जन्म से दूसरा
मनुष्य जन्म संभव नहीं। इस मनुष्य जीवन में अगर महाव्रत अंगीकार कर लिए तो डायरेक्ट जाने की क्षमता है, और अगर सिर्फ अनुव्रत अंगीकार की है तो फिर आपको एक जगह एक बार स्वर्ग जाना पड़ेगा, वहां से आके फिर महाव्रत, क्योंकि मुनि भय ये तो स्पष्ट आप मुनि इस जीवन में हो नहीं पाए हैं, तो कोई बात नहीं, आपने अनुव्रतों को पालन किया है, चलिए आप एक स्टॉपेज बीच में रुकिएगा, वहां से आकर के फिर हिम्मत जुटाइएगा, फिर मुनि बनकर के मोक्ष जाइएगा। इससे ज्यादा शॉर्ट
महाव्रत जिसने लिए
वो उसी जीवन से जा सकता है, जा सकता है।
नहीं मेरा महाराज जी ऐसे पंचम काल में आप कहते हैं कि यहाँ से दुख
नहीं जाएगा,
जाएगा नहीं,
कोई नहीं,
यहाँ से दूसरे भव में जाके भूमि अपने जो कर्म भूमिया है उनमें वहाँ ले ले,
वहाँ कर्म भूमि में जाएगा तो सम्यक दर्शन से रहित जीव होगा तो जाएगा, अच्छा। नहीं तो सम्यक दर्शन से युक्त व्रती व्यक्ति होगा तो देव के अलावा कहीं नहीं जाएगा,
मतलब एक भव तो उसको और ज्यादा लगेगा,
ज्यादा लगेगा
चाहे महावृत्ति भी
हो। इस तरह से ये चौथी ढाल आपके पूरे